जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज आभव तरुणो मूल एक जानो मिथ्यात्व भाव तेने करि निर्मूल हवे करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी विरचित ये अनुपम ग्रंथ राज मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहां विराजमान है। अपन ने उसके सातवें अधिकार के आधार पर कुछ बस उतरी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करने का मन बनाया है। प्रारंभ में ही जो बातें आई थी अपन ने उसकी चर्चा की। कल दो बातें मेन आई थी, एक तो जिन आज्ञा माने तो भी मिथ्या दृष्टि रहे, ऐसा अनंत बार हुआ है जिन्हें आज्ञा मानता है और मिथ्या दृष्टि रहता है, ये कैसे संभव है इसकी चर्चा अपन ने कल विस्तार से सेठ और नौकर के उदाहरण से समझी। फिर मिथ्यात्व शत्रु का अंश भी बुरा है, इसका क्या मतलब होता है, और सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या है, इसकी भी कल अपन ने चर्चा की है। अभी आप सबने अधिकांश जो यहां बैठे हैं उनने जो पूज्य गुरुदेव श्री का 22वीं गाथा पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की व्याख्यान चल रहा था वो सुना, मैंने तो खाली 15 मिनट ही सुन पाया। जो विषय उसमें चल रहा है उसी को वही विषय यहां सातवें अधिकार में लिया गया है, यानी मेन पॉइंट एक है श्रद्धान प्रतीति, और बाकी वहां उन्होंने सम्यक श्रद्धान कैसा होता है ये बात भी सेठ और नौकर के उदाहरण से बताई, और यहां मिथ्या श्रद्धान कैसा होता है उसकी चर्चा इस सातवें अधिकार में विस्तार से की गई है। एक बहुत बढ़िया प्रकरण पॉइंट इसमें आया, उन्होंने कहा, आपने ध्यान दिया होगा आप लोग जो सुन रहे थे, कि तत्वार्थ श्रद्धान ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो सातों तत्वों का स्वरूप गुरुदेव ने बताया, उसमें ग्रंथ में टीका में है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सातों तत्वों का स्वरूप है। फिर शिष्य की तरफ से एक प्रश्न आया कि अगर आप तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हो तो इसमें अव्याप्ति दोष आता है। ये क्या होता है अव्याप्ति दोष, किसी वस्तु की पहचान करना हो तो जिसकी पहचान करनी होती है उसको लक्ष्य कहते हैं, यहां वो आत्मा का लक्ष्य करना त्रिकाली ध्रुव का वो बात नहीं है। यहां तो जैसे उष्णता से अग्नि की पहचान की तो अग्नि लक्ष्य हो गई और उष्णता उसका लक्षण हो गया, लक्षण वड़े लक्षणी ओलखाण थाय छे। ठीक है, तो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जितने लक्ष्य यानी उसका लक्ष्य बताने योग्य चिन्ह जो वस्तु है सभी में पाया जाना चाहिए। कोई में पाया जाए कोई में नहीं पाया जाए तो वो अव्याप्ति दोष कहलाता है। केवल ज्ञान को अगर अपन जीव का लक्षण माने तो अव्याप्ति दोष आएगा। बोलो, केवल ज्ञान इतनी महिमावंत चीज, केवल ज्ञान में अव्याप्ति दोष नहीं है। केवल ज्ञान जीव का लक्षण है ऐसा माना जाए तो अव्याप्ति दोष आएगा। और कोई लक्षण ऐसा होता है अगर उसमें दोष है तो लक्ष्य में भी पाया जाता है, जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी पाया जाए तो मिक्सचर हो जाएगा ना। जैसे जीव का लक्षण अरूपीपना, तो जो अरूपी होता उसको जीव कहते, बराबर है? क्यों, जीव अरूपी नहीं होता क्या? फर्क है दोनों बातों में। जीव अरूपी है ये बात जुदी है, छता जिस जो अरूपी होता है उसे जीव कहते हैं ऐसी परिभाषा बनाई जाए तो क्या दोष आएगा? अति व्याप्ति दोष आएगा। अति ओवरलैप हो गया, ओवर हो गया, वो ओवरफ्लो हो गया। धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाश और कालाणु, इन चार द्रव्यों में भी अरूपीपना है तो ये सभी जीव हो जाएंगे। तो तत्वाश्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहने में शिष्य को अव्याप्ति दोष नजर आया। क्यों नजर आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि विषय कषाय रूप भी प्रवर्तन करते हैं। थोड़ा ये विषय इसमें नौवें अधिकार में लिया है, ये जो इधर चला ये नौवें अधिकार में लिया है। मुझे मूल ये बताना है कि विषय कषाय में प्रवर्तित हैं तो श्रद्धा तो रही नहीं। क्यों नहीं रही, इसका भी गुरुदेव ने अपनी तरफ से एक लॉजिक दिया था। एक सेंटेंस में बात कह के वो आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि यदि श्रद्धान है कि भई ये विषय कषाय बुरे हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये जीव को दुखदायक हैं, तो फिर क्यों करता है, फिर विषय कषाय रूप प्रणमन क्यों करता है? तो शिष्य ने ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसको विषय कषाय रूप प्रणमन देखा जाता है कि नहीं? चक्रवर्ती का रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीना लेकर के दुखी हो रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्रवर्ती का वैभव इत्यादि, ये सब बातें आती हैं प्रथमान योग में, तो बहुत आता है। तो अगर वो विषय कषाय में प्रवर्तता है तो शिष्य ऐसा मानता है कि उसको श्रद्धा नहीं। तो अगर श्रद्धा है तो विषय कषाय में प्रवर्तने के काल में श्रद्धा तो रही नहीं, तो सम्यक दर्शन तो है, तो फिर अव्याप्ति दोष आ गया। लक्ष्य है लेकिन लक्षण खत्म हो गया, समझ में? लक्षण मिट गया विषय कषाय के काल में, ये प्रश्न था। इसके उत्तर में इतना बढ़िया इसमें जो वर्णन आया थोड़ा अलग टाइप का है, जीवना भाव बे प्रकार ना होए छे। मुख्यतया श्रद्धा और चारित्र, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जीव में दो तरह के भाव पाए जाते हैं, एक श्रद्धान रूप और एक पर्णमन रूप। अभी गुरुदेव को ये बार बार विकल्प सता रहा था कि श्रद्धा भी तो पर्याय है, वो भी तो पर्णमन है, तो ऐसे दोनों को मैं जुदा कैसे कर सकते हैं कि श्रद्धा और पर्णमन ऐसा नाम क्यों देते? तो गुरुदेव ने कहा वो बाद में कहने वाले हैं, श्रद्धा का भी पर्णमन होता है, ये बाद में ये बात कहने वाले हैं। पर यहां तो आपने ध्यान दिया होगा अंतिम 5 मिनटों में श्रद्धा की प्रतीति रूप शक्ति उसकी बनी रहती, संभारना नहीं पड़ता। संभारने को हिंदी में क्या बोलती, तो गुजराती शब्द है ना, है संभारने को क्या बोलते? याद करना। अपन को रोजाना माला फेरनी पड़ती कि ये नंबर का बंगला मेरा है और बाकी मेरा नहीं है, ये स्त्री मेरी है बाकी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मेरी है बाकी मेरी नहीं है, ये बच्चे मेरे हैं और बाकी के बाइके हैं वो मेरे नहीं है, ऐसा याद करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, तो भी उस प्रकार की प्रतीति शक्तिपणे निरंतर वर्तती। गुरुदेव ने कहा यह कोई त्रिकाली द्रव्य की शक्तियों की बात नहीं है, ये तो प्रतीति अखंडपने धारावाही रूप से चलती है, उसको उन्होंने शक्ति रूप से बोला। और उदय के निमित्त से, चारित्र मोह के उदय के निमित्त से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इत्यादि परिणाम होते हैं, विषय भोग के भी होते हैं, उसको उन्होंने प्रणमन बोला। कि ये कहने का आशय ये है कि वही श्रद्धा की बात इसमें करना चाहते। टोडरमल जी साहब ने इसमें इस सातवें अधिकार में निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसे चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। गृहित और अगृहित का कल बता दिया था है? तो अभी कल मैंने एक बात उठाई थी लास्ट में कि सातवें अधिकार में जो बात है उसमें गृहित में उसको एंट्री करना कि अगृहित में करना, बात समझ में आई? किसमें एंट्री करें? ये गृहित मिथ्यात्व मानना बड़ा डर लगता है, सातवें अधिकार वाले जीवों को गृहित मिथ्या दृष्टि कहना, डॉक्टर साहब हृदय कांपता है, क्योंकि अपने दिमाग में तो ये धारणा है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की पूजा कर रहे हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव, ये है गृहित मिथ्यात्व का लक्षण। तो पोषे चिर दर्शन मोह, ये तो समझ में आता है कि सातवें में भी जो मिथ्यात्व है वो अनादिकाल के मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला है, लेकिन उसमें कुगुरु कुदेव कुधर्म तो है ही नहीं। आज बहुत मार्मिक बात कहने वाला हूं, ध्यान रखना जरा। तो सातवें वाला ने कुगुरु कुदेव का मानता, वो तो जो जीव जैन है, पहली कंडीशन रखी, जिन आज्ञा को मानते हैं, तो यानी सच्चे दिगंबर शास्त्र पढ़ता है उसको मानता है कि हाँ यही बात बराबर है, ऐसा मानता है, तो भी उसके सूक्ष्म मिथ्यात रह जाता है। और तुम सूक्ष्म मिथ्यात को गृहित मिथ्यात बोलते हो। आप लोगों में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये बात शायद 71 की है, 1971 फतेहपुर जो है अपना हिम्मतनगर के पास में, वहां पंच कल्याणक महोत्सव था, किसी प्रसंग में मैं वहां जा नहीं पाया। 15 दिन का उन्होंने शिविर वगैरह का भी कार्यक्रम रखा था, पूज्य गुरुदेव श्री पूरे 15 दिन उधर पधारे थे, और डॉक्टर भारिल्ल जी ने उसी समय पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तित्व पुस्तक लिखी थी, वो जिस पे उनको डॉक्टरेट इंदौर यूनिवर्सिटी से दी गई, वो पुस्तक उन्होंने उस समय मतलब प्रिंट नहीं हुई थी लेकिन उसकी पांडुलिपि हस्तलिखित प्रति तैयार हो गई थी। उनका ये नेचर था, जब तक गुरुदेव श्री विद्यमान रहे तब तक उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो गुरुदेव को पढ़ा करके सुना करके ठीक छे ठीक छे ठीक छे ऐसा उनका आशीर्वाद ले करके फिर उसको बाहर जाहिर किया। तो गुरुदेव ने पूरा सुना, वो टोडरमल व्यक्तित्व कर्तित्व जो है वो गुरुदेव ने पूरा सुना, तो उसमें ये बात उन्होंने सिद्ध की कि इसमें गृहित मिथ्यात्व है। गृहित माने क्या? गुरुदेव ने बाद में इसकी बड़ी तारीफ की, बोले गजबनु छयोपसम छे, गजबनु छयोपसम छे, आवी बात लखे छे इस टाइप से है कि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि सातवें अधिकार में गृहित मिथ्यात्व। अपन तो गृहित में समय मुंह पट्टी वाले हैं कि जो वस्त्राभूषण वाले गुरु को मानते हैं, कि सवस्त्रधारी गुरु को मानते हैं, कि अन्य जो कुगुरु कुदेव दुनिया में चलते हैं उनको मानते हैं, अरे वो तो गृहित मिथ्यात है ही, उसमें तो कोई शक संदेह की गुंजाइश नहीं है। पर जब इसमें लिखा है जो जीव जैन है, तो मतलब जैन कुल में पैदा होने वाले को ही ये भूलें होती है, तो ये अनादिकाल की है कि नई ग्रहण की हुई है? क्या लिखा है ना, जो जीव जैन है, तो कोई जैन अनादिकाल से होता है? बोलो है, नया जैन कुल मिले, मनुष्य पना मिले, फिर उसमें शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़ने में जो भूल हो गए उसका वर्णन इसमें किया है। तो ये तो नई हुई ना, नई कमाई, पंडितों की नई कमाई, समझ में आया। तो इस तरह से, क्योंकि इसकी जो पहली पंक्ति है कि जो जीव जैन है जिन्हें आज्ञा को मानते हैं उन्हें भी मिथ्यात्व रह जाता है, कहने का आशय ये है कि ये रह जाता है, ये तो एक कथन शैली है। खरेखर तो शास्त्र पढ़ने में जो भूल होती है उससे जो गलत निष्कर्ष निकालता है तो उसका वर्णन इसमें किया है। तो जिसने शास्त्र पढ़ते ही नहीं है वो कैसे निश्चयाभाषी बनेगा, बात समझ में। इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल अगर जानने की जिज्ञासा हो तो मेरी एक बुक है नए रहस्य, उसको आप पढ़ें, उसके पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। और वैसे भी यहाँ तो काफी हमने कई जगह बम्बई में वितरित हुई थी, एक बार दो साल पहले गुजराती में भी आ गई है, तो उसमें अलग से सातवें अध्याय का एक टॉपिक लिया गया है, उसका नाम रखा है जैनाभाषी मिथ्या दृष्टि। तो जो जीव जैन है यानी जैन कुल में जन्म लेने पर भी शास्त्र पढ़े तो भी मिथ्यात रह गया। तो आप कहोगे इसमें कुगुरु कुदेव तो आए नहीं, तो भैया एक बात समझना, कुगुरु कुदेवपना अपनी मान्यता में होता है। बाहर में जो मूर्तियां कुदेवों की दिखाई देती हैं वो मान्यता की ही प्रस्तुति है, मान्यता का ही प्रस्तुतिकरण है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, रामचंद्र जी को कुदेव मानना के सुदेव मानना, जो भी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया मैंने, रामचंद्र जी को मैं पूछता हूं ऐसा बोलता हूं ना, तो जवाब देने के लिए नहीं बोलता हूं, वो आप सोचो उसके लिए बोलता हूं है। इनकी एंट्री कुदेव में, जैसे जगत में सीताराम सीताराम ऐसा बहुत माला जपते हैं, वो बहुत महिमा करते हैं, रामलीला करते हैं। अरे एक जमाना तो वो था किसने बनाई थी वो, रामानंद सागर ने जब वो रामायण बनाई थी तो देश की करोड़ों महिलाएं वो टीवी के सामने आरती लेकर के अगरबत्ती जला करके तैयार होकर के बिल्कुल बैठी, और जो प्रभु रामचंद्र जी आए तो टीवी की आरती चालू हो गई है। उस समय जिस समय रामायण आती थी तो सारे देश में एक तरह से अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू, अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, ऐसा माहौल था उसका रामायण का क्रेज। तो ऐसे रामचंद्र जी जिनके धनुष बाण हैं, बगल में सीता जी बैठी हैं, तो उनको अपन आदर्श माने, सुदेव माने, सच्चा देव माने या कुदेव माने, तो अपन को रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सावधानी से सुनना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हिंदी में एक कहावत है जो ये जो है ना, ये हाईवे वाले जो गवर्नमेंट के जो लोग रहते हैं उसमें बोर्ड लगा देते, कहीं कहीं लिख देते नजर हटी दुर्घटना घटी, पहले लिखते थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घटी माने घट गई, माइनस हो गई, ऐसा नहीं ओछी थई गई एम नहीं, घटी मतलब थई गई, परिणमित हो गई, दुर्घटना घटी। तो सावधानी से सुनना, तो व्यक्ति कुदेव और सुदेव नहीं होता, ये मेरे कहने का मतलब। अगर रामचंद्र जी कुदेव हैं तो राजा ऋषभ देव वो क्या है, समझ में। राजा ऋषभ देव की बात की मैंने, भगवान ऋषभ देव और मुनिराज ऋषभ देव की बात नहीं की। तो वो भी तो समझ लो, उनके यहां तो रामचंद्र जी की अकेली एक सीता जी थी, अपने यहां तो 8000 रानियां थी, बलभद्र की 8000 रानियां होती हैं, नारायण की 16000 रानियां होती हैं, प्रति नारायण की 18000 रानियां होती हैं, चक्रवर्ती की 96000 रानियां होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, वीआईपी लोग जो हैं ये हजार के नीचे इनका फिगर ही नहीं जाता है ऐसा एक बार एक मैगजीन हम बहुत बचपन में पढ़ते थे, उसमें एक लेख आया, लखाण ऐसा कि जैनियों का मतलब कथनी कुछ है और करनी कुछ है, बड़ा ब्रह्मचर्य के गीत गाते हैं, ब्रह्मचर्य को बड़ा धर्म बताते हैं, और उन्हीं के तीर्थंकर हजारों रानियां रखते थे, ऐसा सब उसने लिखा। मुझे तो विचार आया कि उसको जवाब लिखूं, लेकिन कौन उलझन में पड़े, उसको कौन समझाए, जवाब देने से क्या समझने वाला है। तो राज्य अवस्था में वो क्या कुदेव हो गए क्या रामचंद्र जी? जब तक ग्रस्त अवस्था में रहे तो कुदेव कहलाएंगे क्या वो? भैया वो तो राजा है। तुमने राज्य अवस्था वाले जीव को आदर्श माना, इसका नाम तुम्हारी मान्यता में कुदेवपना हुआ। किधर हुआ कुदेव? अदेव को देव मानना, इसका नाम कुदेवपना है। जैसे वो पत्थर को पूजते हैं, कोई पीपल को पूजता है, कोई गाय को पूजता है, ये छठवें अधिकार में है ये सब। तो गाय कुदेव है क्या? गाय मिथ्या दृष्टि हो सकती है, लेकिन कुदेव तो नहीं है ना। लेकिन उस गाय को पूजने योग्य मानना, देखो सेवा करना, सुरक्षा करना, उसकी दया रखना, उसके आहार पानी की चिंता करना, जो किसान लोग हैं अपने ये सब आता है, पशुओं के प्रति भी क्रूरता नहीं होना, अति भारारोपण नहीं होना, ये सब आता है अपने यहाँ। ये सुबह बताया था ना, एकादश पदी 11 प्रतिमाओं में ये सब आता है। लेकिन उससे वो अनंत भगवान जैसी पूज्य हो गई, कि पंच परमेष्टि जैसी पूज्य हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। देखो देव किसे कहते? कल गुरुदेव ने कहा था ददाति इति देव। ये देव शास्त्र गुरु में जो हमारा आजकल के बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो रोल मॉडल, जिसके जैसा आप जिसमें अपना भविष्य देखते हो, वो आदर्श पुरुष होता। आदर्श माने क्या? हम भी ऐसे बनेंगे, ख्याल में आए ना। मैं तो एक वो मंगलाचरण बोलता हूं, कल से वही बोलूंगा, वो है अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं, तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काया को नाम आए स्तोति को उचारी है, धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ये अंतिम पंक्तियां ये सारभूत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तो हम जिसके जे समान भविष्य में बनना चाहें वो उसका देव। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय क्रिकेट के कप्तान हुआ करते थे कपिल देव, है? तो मैं एक स्लोगन बोला करता था कि हमारे देव हैं क्रिकेट के देव हैं कपिल देव, और हमारे देव हैं अरंत देव। समझ में आया? तो वो जो बच्चा क्रिकेट की रुचि रखता है वो मैं कपिल बनूंगा, अभी आज के जमाने में सचिन बनूंगा कि मैं धोनी बनूंगा, ऐसा उसका आदर्श उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो हमें पूर्ण सुखी होना है तो मैं अरंत बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। समझ में आया? तो हमारे आदर्श अरंत और सिद्ध भगवान है। अरहंत ऋषभ देव हमारे आदर्श हैं, अरहंत दशा में जो रामचंद्र जी हुए वो हमारे आदर्श हैं, राजा ऋषभ देव अथवा राजा रामचंद्र जी वो हमारे आदर्श नहीं। राजपद तो पुण्य का फल है, वो तो अनंत बार मिला। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो राजा ऋषभ देव या राजा रामचंद्र जी पूर्ण सुखी होते और राजपद में उन्हें सुख मिलता, तो वे दीक्षा लेकर के निर्ग्रंथों का मार्ग क्यों अपनाते? एक वो वैराग्य भावना है, उसमें आता है जो संसार विष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर उसका त्याग क्यों करते? तो कहने का आशय यह है कि उनके लाइफ में भी राज्य अवस्था, राजपाट और ये सब था, परंतु हमें वो आदर्श नहीं है, इसलिए वो हमारे देव नहीं। तो भी अगर कोई राज अवस्था वाले को देव मानता है, आदर्श मानता है, तो कुदेवों को मानता है। वो राग द्वेष उसका आदर्श हुआ, पुण्य का फल उसका आदर्श हुआ, भगवान आत्मा और उसके आश्रय से होने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो उसका आदर्श नहीं हुआ। इसलिए सामने भले सच्चे देव की प्रतिमा हो गए तो भी वो अभिप्राय में कुदेव का आराधक है। विक्रम भाई, थोड़ी कड़क बात हो सकती है, लेकिन मैं तो कड़क बात को भी बहुत सॉफ्ट स्टाइल में बोलता हूं। अरे इसमें कड़क की क्या बात है, ये तो बहुत सिंपल बात है। देखो, वो रक्षा ने देव शास्त्र गुरु की पूजन लिखी है, उसकी जयमाला में शुरुआत में एक बहुत बढ़िया बात आती है। करुणा निधि तुमको समझ नाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अब यहां पर अपने आशी मंदिर भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, बाहुबली भगवान, अपन उनके सामने खड़े और अभिप्राय में ये मानता है कि मुझे नैया पार लगा दो, कि मुझे पार कर दो, कि मेरा कल्याण कर दो। कोई कोई तो ऐसा बोलते हैं भले आदमी कि तेरे पांच हुए कल्याण, एक मेरा कर दे। मुझे बड़ी हंसी आती, मुझे वो लेखक मिल जाए तो अच्छी क्लास लूं उसकी में, समझ में आए, जिस राइटर जिसने ये लिखा है उससे या तो मैं समझ लूं या उसको समझा दूं कि क्या करते हो तुम, तेरे पांच हुए कल्याण हाँ, अब तो अपने पास चार रखो, एक मुझे दे दो। एक बार मेरा कल्याण कर दो। तो वीतराग देव के सामने खड़े होकर भाषा भले बोले, एक बात गुरुदेव ने कही थी अभी आज 15 मिनट लास्ट में, कि सम्यक दृष्टि भी व्यवहार की भाषा बोलते, कि मेरा मकान है, आप हमारे घर पे पधारो, आप हमारी कुटिया में पधारो। कहोगे तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, तुम जड़ मकान को अपना मानते हो। अरे भैया, भाषा बोलने की अलग होती है और मान्यता श्रद्धा प्रतीति वो अलग होती है। दुनिया का व्यवहार ये दो नया, दुनिया दुनिया बोलते ना, दुनिया दो नया, दो नयों के ऊपर दुनिया की गाड़ी चलती है। जैसे रेलवे दो पटरियों पर चलती है, वैसे मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार होती क्या, और भाषा लोक व्यवहार के अनुसार होती है। भाषा क्षणिक सत्य को बताती है। ये कोई अपने बंगले को अपना बोलता है तो उसको झूठ बोलने का पाप लगेगा, अपना मानता है तो मिथ्यात का पाप लगेगा। क्या बोला, अपना मानता है तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा, लेकिन ये मेरा बंगला है, आप इस नंबर के बंगले में आना, हमारे घर पे पधारिए, भोजन करने के लिए पधारिए, हमारे यहाँ ठहरिए, कोई बच्चा आवे तो ये हमारा बच्चा है, ये बच्चे का बच्चा है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो क्या बोलेगा, सब कोई आए तो कौन है, ये भगवान आत्मा है, दूसरा बच्चा आया तो कौन है, ये भगवान आत्मा है। ऐसी भाषा जगत में चलती है, है? ये तो तत्व निरूपण में चलती। आज कई बातें बहुत छू जाने वाली आई। एक नौकर और सेठ का जब उदाहरण चलता था तो उसमें एक बात आई कि वो नौकर बिल्कुल ऐसी भाषा बोलता कि जैसे कि पूरा जो धंधा पानी है सब उसका ही है। आज हमको 5,000 का नफा, उस जमाने में 5,000 भी बहुत होते थे, है? तो आज 5,000 का नफा हो गया, 5,000 का घाटा हो गया, हमने इतना माल खरीद लिया, इतना माल बेच दिया, ऐसा सब बोलेगा। एक बात इसमें खास थी, लेकिन जब वो सेठ के पास अपना तनख्वाह का हिसाब करता है, हिसाब इतने रुपए हमारे बाकी हैं, इतने दिन काम के हो गए, इतना ऐसा हो गया, आपने बहुत दिनों से तनख्वाह बढ़ाई नहीं, तो जो मुझे मिलता है उसको ही अपना मानता है, वो जो उसकी तनख्वाह सैलरी है वो ही मेरी है, फिर एक पैसा भी जो सेठ का है, ईमानदार नौकर हो गए तो उसको अपना मानते ही नहीं, सोचता नहीं, सपने में भी पराये धन को अपने रूप में कभी सोचता नहीं, ऐसा उदाहरण में आया। अभी उसको सिद्धांत में क्या लगाया था, इसी तरह से ज्ञानी कर्म के उदय को भोगते। मैं जो विचार आया, अगर ये बात यहाँ प्रसाद सिद्धि उपाय में नहीं लिखी होती और गुरुदेव श्री इस पर प्रवचन नहीं कर रहे होते, और फिर अपन कोई आपस में चर्चा करें कि ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है, तो अपन तो उसको निगोदय ही भेज दे। ये मिथ्या दृष्टि कैसी है? ज्ञानी भोगता, अरे ज्ञानी तो अकर्ता और अभोक्ता होते हैं, ज्ञानी तो पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि वाले होते हैं, वो अपने को कर्ता भोक्ता मानते ही नहीं है, वो तो कर्म के उदय के भी ज्ञाता रहते हैं। भैया ये बात भी सत्य है, समय सार में ज्ञानियों का वर्णन इसी शैली से किया गया है कि ज्ञानी को आश्रव नहीं होते, ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। ख्याल में आए ना, ये दृष्टि प्रधान शैली में ज्ञानी की अंतर प्रतीति जो शक्ति बताई थी उसकी अपेक्षा वर्णन है, पर संयोग की अपेक्षा, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, तो जब ज्ञानी कर्म के उदय को भोगते हैं ऐसा शब्द आया उसमें, ख्याल में आया ना। तो इस तरह से ये अभिप्राय की बात मेन है, तो मैं तो आपको वो चित्र खड़ा करना है कि हम भगवान के सामने खड़े हैं और बोल अब मानते ऐसा हैं कि ये मेरा भला कर देंगे, तो मुझे बताओ वो सच्चे देव का आराधक है कि कुदेव का आराधक है? क्या होना चाहिए, क्या मानना चाहिए? उसके ज्ञान में श्रद्धान में सच्चे देव का स्वरूप आए ही नहीं, भक्ति कहां से करेगा? कल सुनना सवेरे नियम सार में परम भक्ति अधिकार चालू होने वाला है, आज से चालू हुआ है परम भक्ति अधिकार 134 गाथा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही परम भक्ति है, निश्चय भक्ति। मुझे उस समय वो पंक्ति याद आई जो आजकल वो भी भक्ति बहुत प्रसिद्ध है, क्या है वो? ऐसी भक्ति करूं प्रभु की पाऊं न जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। अब सोचो कैसी भक्ति, ऐसी भक्ति करूं जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े, तो वो भक्ति कैसी होगी जिसका वर्णन कल से नियम सार ग्रंथ में चलने वाला है, ऐसी होगी परम भक्ति। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम वो परम भक्ति है। और ये तो ऐसा मान रहा है कि भगवान मेरा भला कर देंगे, अपने यहां तो कम से कम मैं सच कहता हूं गुरुदेव के प्रताप से काफी अंशों में बहुत अपने यहां सुधार है। थोड़ा बाहर की तरफ देखते ना तो ऐसा लगता अपन लोग बहुत अच्छे हैं। इतना जगत में इतना अज्ञान अंधकार, इतना मोह, इतनी मान्यता विपरीत दिखाई देती है। एक गुरुदेव की स्तुति आती है, शायद गुरुदेव श्री के वचनामृत के लास्ट में 3-4 स्तुतियां लिखी हुई है। ज्यां ज्यों त्यां नजर पड़ता, क्या है, राग ने द्वेष गाथा, पुण्य ने पाप गाथा, एवा ए कलिकाल मां जगत ना कहीं पुण्य बाकी है तो, है ना, इस तरह का, गुरु कान तू नाविक मड़ो, इस प्रकार का। तो वास्तव में देखा जाए, और फिर भी अगर किसी का ऐसा खोटा अभिप्राय हो तब तो बलियारी है। ऐसी दिव्य ध्वनि जैसी वाणी सुनने के बावजूद भी अगर किसी के मन में ये रहता है कि इससे मेरा भला हो जाएगा, तब तो समझ लो अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये अभिप्राय की बात है भाई, तो बात तो ये सिद्ध करनी है मुझे, इसमें गृहित मिथ्यात कैसे हुआ सातवें अधिकार में, मूल मुद्दा तो ये है। तो सामने देखो, समय सार पढ़ा और समय सार पढ़ के भी उसका विपरीत अर्थ निकाला। समय सार में मान लो लिखा है कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है, तो अगर तो आत्मा में राग द्वेष होता ही नहीं है, आत्मा तो गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, ये तो सब जड़ है, आत्मा तो भिन्न है, ऐसा सर्वथा अगर व्यवहार का लोप करे और निश्चय का एकांत हो जाए, तो उसने समय सार को माना कि समय सार की विराधना करी। वो सच्चे शास्त्र को मानता है कि उसने तो समय सार को शस्त्र बना लिया, शास्त्र नहीं बनाया, उसने तो उसको कुशास्त्र बना लिया। तो अपनी खोटी मान्यता होवे तो सामने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हैं, निमित्त तरीके। ये तो आपने सुना होगा, निमित्त के अनुसार का निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। ये तो फार्मूला है ना, निमित्त से कार्य नहीं होता, जैसा कार्य हुआ वैसा निमित्त कहने में आता है उपचार करके। तो तुम्हारे अंदर कार्य कैसा हुआ, मिथ्यात का, तो तुमने तो सच्चे देव गुरु को मिथ्यात में निमित्त बना लिया। तो अभी भक्ति तो हो रही है देवगुरु शास्त्र की, लेकिन श्रद्धान में, प्रतीति में हम कुदेव का पोषण कर रहे। अपने यहां एक विद्वान हुए मुंबई में, नेमीचंद भाई, नेमा काका, आपने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने लाभ लिया है उनका, हमने भी बहुत प्रवचन सुने उनके। तो एक वो बहुत बढ़िया बात कहते थे कि ये जब गुरुदेव की भक्ति में स्तुति बोलता है, अपन लोग बोलते हैं आदासना जीवन शिल्पी तने नमू, तो वो इसकी बड़ी मतलब समीक्षा करते, कमेंट्स करते, गुरुदेव तेरे जीवन शिल्पी हैं, बड़ी बढ़िया बात, जरा देख तो एक बार तेरा जीवन कैसा है। है अपना जीवन में जो नैतिकता, जो सरलता, जो सज्जनता, व्यवहार की बात, आत्मा के अनुभव वाली बात तो बहुत निराली है, वो तो बहुत समझ लीजिए सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है जीवन की, वो हो जाए तब तो कहने क्या है, है? सबका लक्ष्य तो वो ही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो साधर्मी वात्सल्य है, जो नैतिकता है, जो सहजता है, जो अपने से विरोधी हैं उनके प्रति भी मध्यस्थ भाव है, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव है, वैसा जीवन है कि छल कपट चोरी का पॉलिटिक्स संभाला, वैसा जीवन है तो गुरुदेव को बदनाम करता है, ऐसा जीवन का शिल्पी गुरुदेव को बोलता है, है? कोई मान लो अगर आपका कुर्ता किसी दर्जी से सिलवाओ और वो फिटिंग गड़बड़ कर देवे, और फिर तुम गीत गाओ कि इस दर्जी ने बनाया, इस दर्जी ने बनाया, तो वो उसकी बदनामी है कि उसकी प्रशंसा है। कहने का आशय ये है कि निमित्त रूप में सच्चे देव शास्त्र गुरु होवे तो भी ये जीव अभिप्राय में कुगुरु कुदेव का पोषण करता है, इसलिए सातवें अधिकार में भी ये नई नई मान्यताएं होने से ये प्रच्छन्न गृहित मिथ्यात्व, छुपा हुआ गृहित मिथ्यात्व, दिखता नहीं है ऊपर से, पांचवें छठवें वाला तो ऊपर से दिखता है, वो क्रिया में दिखता है। बातें तो बहुत सी हैं मैटर इसके बहाने से, वैसे तो कल परसों में आपको बताऊंगा मैं, इसके ऊपर 285 लेक्चर हुए मोक्षवान प्रकाशक, एक एक पंक्ति पंक्ति पे देवलाली में 10 साल पहले, तो वो आपको कहूंगा, वो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं, यहां तो आपको केवल सैंपल दिखाना है। तो देखो ये सातवें अधिकार में भी गृहित मिथ्यात की बात, पांचवें छठवें की बात करूं थोड़ा। एक बार एक भाई ने मेरे को अमेरिका में ऐसा समझाया, पंडित जी पहले दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पर थी, जब से शुरू हुआ डेवलपमेंट तो खेती के ऊपर थी, फिर खेती थोड़ी गौण हो गई, उद्योग धंधे प्रोडक्शन चालू हो गया, पर वो भी कम हो गए, दूसरी दूसरी चीजें आ गई, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर देश की इकोनॉमी विश्व की खड़ी हुई है। मैंने उससे कहा कि भैया आप जो कहो सो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक है, मैं भी उसका स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था गृहित मिथ्यात पर टिकी हुई है। इसका मतलब समझे आप, ये सही बात है, ये मजाक नहीं है। एक मंदिर के प्रति मान्यता, ख्याल में आया ना, अमरनाथ जाना है, 25,000 लोग फंसे हुए अभी भी, ख्याल में आया ना, लाखों लोग वहां जाएंगे, लाखों लोग समझ लो साल में करोड़ों लोग उधर जाएंगे, कोई वहां अपने साउथ में है तो उधर जाएंगे, हमारे देवलाली के पड़ोस में है, समझ में आया, उधर जाएंगे। अब करोड़ों लोगों का आवागमन होएगा तो उतनी ट्रेनें चलेंगी, उसी बसें चलेंगी, उतने सफाई कर्मचारी, उतने होटल वाले, उतने चाय वाले, उतने अगरबत्ती वाले, उतने फूल माला वाले, उतने नरियल वाले, बोलो आप लगाओ हिसाब। अगर ये सब बंद हो जाए तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? इकोनॉमी की बात अलग है, ये संसार ही मिथ्यात्व के ऊपर खड़ा हुआ है, असल बात तो ये है। और उसको सपोर्ट करने वाला अगर कोई है तो ये गृहित मिथ्यात्व। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब प्रवचन चालू किया तो मिथ्यात्व के लिए एक उदाहरण पे एक गाना बहुत बढ़िया आता था। पहले देश प्रेम का एक गाना चलता था, क्या था वो, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज देश की मिट्टी नजर सितारों से। भाव तो समझ गए होंगे आप, इतनी खुशी आजादी मिलने की, इतनी खुशी कि देश की मिट्टी में इतना गौरव आ गया कि वो सितारों से नजर मिला रही, इतनी ऊंची हो गई, उसके अंदर इतना गर्व हो गया देश की मिट्टी पे है। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कौन सी बात? संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। सुना आपने? नहीं सुना? कोई प्रदीप जी हुए, कोई अच्छे कवि, देशभक्त कवि हुए, उनकी बहुत कैसेट चलती थी पहले। ये मिथ्यात्व भी वास्तव में देखा जाए तो छुपा हुआ गद्दार है, मुझे तो ये कहना है। बाहर में तो भक्ति है, दया है, दान है, व्रत है, शील है, मुनि भी हो गया है, अनंत बार मुनि व्रत धार, अनंत बार गिरग उपजायो, ये सब हो गया, लेकिन अंदर अभिप्राय में कर्तापना बैठा रहा। ख्याल में आया ना, कर्तत्व बैठा रहा अभिप्राय में, तो समझ लीजिए सारा का सारा जो है वो पुण्य का परिणाम, वो कल बताया था, तो दूध में एक बूंद जहर जैसा है। तो इसमें अभी मैं तीन तरह के जो हैं, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास, वो अध्याय प्रारंभ करता हूं आज और कल ये चलेगा। सबसे पहली बात ये है कि निश्चयाभास व्यवहाराभास मान्यता के दोष हैं, आचरण के दोष नहीं, ये बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए। जैसा कि बताया था ना, श्रद्धान, प्रतीति, शक्ति, यानी हम मानते क्या हैं। ये जो दो तीन दिन बाद विषय आएगा क्रिया परिणाम और अभिप्राय वाला, उसमें ये बहुत ज्यादा खुलेगा कि हमारी लाइफ में तीन पर्दे हैं, समझ लो। एक तो ये एक्शन वाला, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, समझ में आया, लोग व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, ये क्रिया, ये भक्ति करते हैं, पूजा करते, दान देते, पैसा भी कमाते, दान भी देते, ये सब क्या, कौन सा पर्दा है? ये क्रिया वाला पर्दा। नाटक में पर्दे होते हैं ना जैसे, वैसा। उसके पीछे एक पर्दा होता है परिणाम, जिसको आज गुरुदेव ने परिणाम शब्द बोला, चारित्र मोह के उदय वाला। राग होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, खाने की इच्छा, खाने की क्रिया, खाने की इच्छा, समझ में आया? ये परिणाम माने जीव के भाव, जिन भावों के निमित्त से प्रायः बाह्य क्रिया होती है, प्रायः लगा दिया। कभी कभी ऐसा होता है भाव होवे और क्रिया नहीं होवे, कभी कभी ऐसा होता है क्रिया होवे और भाव नहीं होवे, दोनों का ट्रैक अलग अलग ट्रैक पे चले, क्रिया होती है कुछ और भाव होते हैं कुछ, ऐसा जुदा जुदा भी होता है, उसकी अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। लेकिन वो दूसरा जो पोर्शन है वो परिणाम का है। यहां कहते हैं कि अभिप्राय माने मान्यता, मुझे तो आज ये महामंत्र मिल गया कि उसको संभालना नहीं पड़ता, मैं तो उसका अगर दूसरा अर्थ भी करें ना, संभालना नहीं पड़ता, बार बार केयर नहीं करनी पड़ती कि मैं इसको अपना मानता हूं कि नहीं, मैं इस मकान को अपना मानता हूं कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं मेरा मकान है तो वो उसमें लिख ले, नोट कर ले नोटबुक में, ऐसा भूल तो नहीं गया, याद भी नहीं करना पड़ता, केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन मान्यता में अखंडपने चला करता है। तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास और अव्ययाभास, वो चौथा वाला अलग है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सम्यक्त सन्मुख की बात बाद में करेंगे। ये मान्यता के दोष हैं, आचरण के नहीं। इसको यूं समझो, एक व्यक्ति रोजाना नियम से अभिषेक करने आता है, अब बराबर 6:30 बजे आ जाएगा, अभिषेक करेगा, पूरा समझ लो कपड़े से आलुंछन करना और कपड़ा सुखाना, वो पूरी क्रिया, जैसे 1 घंटा पूजा करेगा। तो जिसको पूजा करने का रस नहीं है, प्रमादी है, वो कहे ये तो व्यवहाराभास में चला गया। समझ में आया? अगर मान लो कोई हरी नहीं खाता है या व्रतशील से रहता है, तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो व्यवहाराभास में चलेगा। अपन लोग भी जो मित्र पक्ष वाले लोग हैं ना, उनके बारे में अपन सबकी यही धारणा, ये सब व्यवहाराभासी, ये सब क्रियाकांड वाले, ये सब क्रियाकांड वाले। मैं एक बात पूछता हूं, अपने जो कुंदकुंदाचार्य, जयसेनाचार्य, अमृतचंद्राचार्य हुए, ये पंच महाव्रत पालते थे कि नहीं पालते थे? तो व्यवहाराभासी थे। यानी अगर कोई शुभ भाव रूप क्रिया होती है या शुभ भाव होता है, उसका नाम व्यवहाराभास नहीं है। पुण्य में मिथ्यात्व नहीं है, फिर किसमें है? पुण्य को धर्म मानने में मिथ्यात्व है। वो क्रिया का कर्ता मैं हूं और इस क्रिया से मुझे संवर्णिद्रा होती है कि इस क्रिया से मुझे धर्म होता है, ऐसी मान्यता का नाम व्यवहाराभास। समझ में आया बराबर? तो ये व्यवहाराभास आचरण में है कि श्रद्धान में, अभिप्राय में हुआ? कहां हुआ? ये अभिप्राय का दोष है। कोई जीव पूजा करने में धर्म होता है, व्रत पालने से, भले करे नहीं कर पाए, आदत नहीं है कि टाइम नहीं है कि कोई परेशानी है या प्रमादी है, उसके अनेक कारण हो सकते, तो पूजा नहीं करता वो अलग चीज है। लेकिन अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, मेरे को पूजा तो करनी चाहिए, उसमें धर्म मानता है, करे नहीं करे वो आचरण की बात, लेकिन धर्म तो मानते ही मानता है, तो वो व्यवहाराभासी हुआ, भले उसके जीवन में पूजा नहीं। और ज्ञानी निश्चय भक्ति भी करते हैं और व्यवहार भक्ति भी होती है, लेकिन निश्चय भक्ति यानी वीतराग भाव, उसको ही धर्म मानते हैं, और जो व्यवहार भक्ति यानी शुभ भाव है, वो तो उपचार से धर्म कही जाती, वो धर्म नहीं है, धर्म की पैकिंग है। वो तो सुना होगा ना आपने, पैकिंग वाला जो टॉपिक है, पैकिंग और माल, पैकिंग के भीतर जो वस्तु होती है उसको क्या बोलते? माल बोलते हैं ना, माल बिकता है ना बाजार में, है? आपने समझ लो एक शर्ट खरीदी, तो वो शर्ट एक प्लास्टिक के रैपर में आएगी, फिर वो रैपर एक पुट्ठे के उसमें आएगा, फिर वो उसको एक कैरी बैग में देगा, एक पैकिंग, फिर दूसरी पैकिंग, फिर तीसरी पैकिंग, कितनी सारी पैकिंग रहती। तो उसकी भी चर्चा मैं करूंगा आजकल में, पैकिंग की। इसी तरह ध्यान देना, सावधानी से सुनना, मिसयूज नहीं करना। निश्चयाभास भी आचरण का दोष नहीं है। क्या बोला? निश्चयाभास जैसे व्यवहाराभास आचरण का दोष नहीं है, अभिप्राय का दोष है, वैसे निश्चयाभास भी आचरण का दोष नहीं है, अभिप्राय का दोष। तो कैसा अभिप्राय, क्या होता है उसमें? आत्मा तो शुद्ध है, वो ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय चलता है ना, इसके मंगलाचरण में टोडर मल जी ने लिखा, को नय निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है सो छंद न पहचाने निज शुद्धता। शुद्ध स्वभाव को तो नहीं जानते, केवल बातें करते हैं कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा में तो राग भी नहीं है, आत्मा में तुमने देखा है आत्मा को? देखा है तो देख के बोलते हो कि ऐसे ही सुन के बोलते हो? ये तो वैसे ही क्वेश्चन हुआ जैसे गुरुदेव ने मूलचंद जी को पूछा था, हैं? ये भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही होगा, तो तुमको भगवान की श्रद्धा है, ऐसे आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है? बात तो सही है, पर तुम्हें उसकी श्रद्धा यथार्थ है कि नहीं है, सवाल इस बात का है। तो कोई मान लो आचरण में अशुभ पना भी होता है गृहस्थाश्रम में, खाने का राग, पीने का राग, घूमने फिरने का राग, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों का राग, ये सब होता है, तो इतने मात्र से किसी को निश्चयाभासी नहीं कह सकते आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक लड़का समझ लो लंदन में पैदा हुआ, बहुत से लंदन का जो युवा वर्ग है तो वो कोई धर्मात्मा तो होंगे नहीं, उनके कल्चर मांस भक्षी भी होते हैं, शराब पीने वाले भी होते हैं, कुशील सेवन करने वाले भी होते हैं, तो अपन उनको निश्चयभाषी कह सकते हैं ना कि ये निश्चयभाषी। बोलो विक्रम भाई है, क्योंकि निश्चयभाषी की कुछ योग्यताएं होती, क्वालिफिकेशन। निश्चयभाषी होने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी? जैन कुल में जन्म लिया होवे, पहली बात लिखा है जे जीवो जैन छे। तो जो जैन ही नहीं है वो काय का निश्चयभाषी, भले स्वच्छंद हो सकता है, ख्याल में आए? स्वच्छंदता की भी एक परिभाषा अलग है, वो तीव्र कसाई हो सकता है, वो व्यसनी हो सकता है, वो पापी है, पाप परिणाम वाला है, नरक इत्यादि गमन करेगा। गुरुदेव ने अपने वो कजिन ब्रदर थे ना, उनको यही बोला था ना, तमे वाणिया छो तो मांस दारू खाता नथी तो नरक में तो नहीं जाओगे, इतनी गारंटी तो नहीं देती है, मांस दारू नहीं खाते हो तो तुम नरक में तो नहीं जाओगे, और स्वर्ग में जाओ ऐसे तुम्हारे लक्षण नहीं दिखते हैं, तो क्या बचा है? तो जो मांस दारू नहीं खाते वो नरक में नहीं जाएंगे, जो खाते हैं उनका तो समझ लो एक तरह से पक्का ही हो गया है ना, तो वो नरकगामी हो सकता है, लेकिन निश्चयभाषी संज्ञा उसको नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना जरा पूरा, अभी तो है अपने पास 5-10 मिनट, है सवा नौ तक ले दे, हाँ सवा नौ तक। तो अभी मैं कहना क्या चाहता हूं तो पाश्चात्य संस्कृति की जो पीढ़ी है वो सत्य व्यसन में प्रवीण होती है, वहां पर सत्य व्यसन को कल्चर माना जाता है, उसको बुरा ही नहीं माना जाता, अपने यहां सत्य व्यसन को बुरा माना जाता है, कितना फर्क है सोच में, है कि नहीं? तो भी उसको निश्चयभाषी नहीं कहेंगे, लेकिन एक आदमी समय सार पढ़ता है और रात्रि में भोजन करता है तो निश्चयभाषी हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से सुनना जरा, अभी भी नहीं हुआ, हो सकता है उसमें ये कमजोरी हो ऑफिस से आने में। एक गुरुदेव तो भैया बहुत कड़क थे, मैंने तो स्वयं अपने कानों से उन्हें ये कहते हुए रात्रि चर्चा में सुना है, रात्रि में खावू पड़े आवी नौकरी आत्मार्थी ने न होए। अब उनने किस एंगल से किस परिस्थिति को सोच के कहा, ख्याल में आया? अपन परिस्थितियों का कितनी बहाना बनाए लेकिन दोस्त तो है ही है वो, तो किसी को अध्यात्म का रस भी है, स्वाध्याय का रस है, तो वो समय सारे भी पढ़ता है, कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, कि उसको अधिकार नहीं है पढ़ने का। उपदेश शैली में भले ऐसा कहा जाए कि जो रात्रि में खाते हैं उन्हें समय सार पढ़ने का अधिकार नहीं, छूने का भी अधिकार नहीं, ये सब उपदेश शैली की बात है, क्यों नहीं है अधिकार, ख्याल में आया ना? तो उसे बड़ा खेद होता है, अरे यार मेरा जीवन ऐसा, और कब ऐसा अवसर आएगा जब मेरे को इससे व्यवस्था ऐसी बन जाए कि इससे छूट मिल जाए, तो उसको खेद होता है, तो वो निश्चयभाषी नहीं है। दोष तो लगेगा, पाप का बंध तो होएगा, लेकिन निश्चयभाष नाम का जो मिथ्यात्व है, क्योंकि निश्चयभाषी व्यवहारावासी उभयाभाषी मिथ्या दृष्टियों के भेद हैं, पाप के भेद नहीं है। पाप के भेद है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इसमें निश्चयभाष कहां लिखा? आया समझ में? इसमें निश्चयभाष तो नहीं आया ना। तो निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि, ते मिथ्यात्व के भेद हुए। तो फिर निश्चयभाषी कौन होगा? सुनना भी ध्यान से, जो जिनवाणी की आड़ लेकर के अपने विषय कषाय का पोषण करने का अभिप्राय है, उसका नाम निश्चयभाषी। वो ये कहे, रात्रि भोजन करे और कोई उसको टोके, यार तुम ये गलत काम करते हो, तुमको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्या बात करते हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता थोड़ी है, आत्मा तो खाता थोड़ी है, और वो उसकी योग्यता से, उसकी स्वतंत्र योग्यता से वो परिणमन होता है, उसमें आत्मा क्या कर सकता है? ऐसा आत्मा की समझ लो भिन्नता बताए, आत्मा शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं है ये बताए, और इस सिद्धांत का यूज मिसयूज इसमें करे अपने विषय कषाय के पोषण में, समझ लो आया। तो भाई भाई का झगड़ा हो गया, तो एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, ऐसा हमारा ये मकान हमारे हक का है और इसने कब्जा कर लिया है, तो ऐसा कोर्ट केस कर दिया। उसको किसी मेरे जैसे आदमी ने बोला, यार आपस में सुलटा लो यार, वो तो मिलने वाला तो है नहीं, जितने का मकान है उतना तो तुम्हारा मुकदमे में चला जाएगा, काहे को बेकार लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम तो मुमुक्षु हो, तुम तो समझदार हो, अरे क्या बात करते हो। रामचंद्र वो भरत चक्रवर्ती ने भी बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया था, तो मैंने अपने भाई के ऊपर मुकदमा चला दिया तो कौन सा बड़ा हो गया, तो मेरा सम्यक तो थोड़ी चला जाएगा उससे। तो उसको भरत चक्रवर्ती इसलिए याद नहीं आते कि उनका जीवन वैराग्यमय था, भरत जी घर में वैरागी, भरत जी सहज वैरागी, ऐसा याद नहीं आता उसको। 96,000 रानियां वाले भरत चक्रवर्ती अच्छे लगते हैं, समझ में आया। बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने वाले भरत चक्रवर्ती उसके आदर्श हैं। तो प्रथमान योग का यूज अपने कषाय के पोषण में किया, इसका नाम निश्चयाभास। ख्याल में आया ना, ये स्वच्छंदता के एंगल से ये बात है। तो बात तो ये चलती है भैया कि निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास ये अभिप्राय के दोष हैं, ये तत्व निर्णय में होने वाली भूल है। देखो टोटल मिलियन लिखा है, जिनागम मां निश्चय व्यवहार रूप वर्णन छे, तेमा यथार्थ नु नाम निश्चय तथा उपचार नु नाम व्यवहार छे, तेना स्वरूप ने नहीं जानता अन्यथा प्रवर्ते छे, ते अही कहिए छिए। अब इसको समझ लें, यथार्थ का नाम निश्चय, यथा अर्थ, यथा माने जैसा है और अर्थ माने पदार्थ, तो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना वैसी कहना इसका नाम निश्चय, और जैसी नहीं है तो भी किसी अपेक्षा से किसी प्रयोजन से ऐसा कहना तो उसका नाम है उपचार। देखो जो यथार्थ नहीं है सत्य नहीं है तो वो झूठ ही होगा, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में सच और झूठ के बीच में एक तीसरी चीज और है, वो कहलाती है उपचार। उससे कोई झूठ नाम का पाप नहीं लगता। आप कहोगे मेरे ये मेरी गाड़ी है, आपको जहां चाहे वहां ले जाओ, ये मेरा मकान है, कभी भी आप बंबई आओ तो घर पे जरूर पधारना, तो आपको झूठ बोलने का पाप लग जाएगा डॉक्टर साहब। इससे ये व्यवहार का भी उल्लंघन करे, यानी दूसरे के मकान को अपना मकान कहे, समझ में आया, दूसरे के वस्तु को अपनी वस्तु कहे, तो लोक व्यवहार में भी जिसे झूठ कहा जाता है वैसा बोले तो झूठ नाम का पाप लगता है। लेकिन जो उपचार वाली भाषा बोली जाती है, जैसे कल मैंने कहा पड़ोसी कोई होवे तो उसको चाचा कहना, मामा के गांव के व्यक्ति को मामा कहना, मम्मी की सहेली हो तो उसको मासी कहना, ऐसे कितने सारे रिश्तों में बात होती है, दोस्त की माँ को भी मम्मी कहना, तो ये सब चलता है कि नहीं चलता, तो इसमें झूठ वाला पाप लग जाता है, ये तो शिष्टाचार की बात है। तो उपचार अलग चीज है और झूठ अलग चीज है, ये मैं कहना चाहता हूं। घी के घड़े को घी का घड़ा, घड़े में घी रखा है तो मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहने से झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, ये उपचरित कथन माना जाएगा। कितनी बढ़िया परिभाषा है, यथार्थ नु नाम निश्चय और उपचार नु नाम व्यवहार छे। अब ये निश्चयाभासी क्या मानते हैं, और दो चार छह मान्यताओं का इसमें वर्णन है, उसकी जो मेन थीम है उसकी चर्चा अपन कल से विस्तार से लेंगे। पैकिंग और माल के उदाहरण से निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये तीनों पॉइंट इसी मुद्दे पे इसी उदाहरण में फिट होंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया इसलिए यहीं विराम लेते हैं।